नमस्कार, मैं रविश कुमार। शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन करना गैर कानूनी नहीं है और ना ही आतंकी कार्रवाई है। भड़काऊ भाषण और चक्का जाम करना ऐसे अपराध नहीं है कि अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट UAPA की संगीन धाराएं लगा दी जाएं। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश का यह सार दिल्ली पुलिस के अलावा उन लोगों के सामने आईने की तरह खड़ा है जो सिर्फ इसी बात के लिए अभियान चला रहे थे कि नागरिकता कानून के विरोधी आतंकी साजिश कर रहे थे, दिल्ली दंगों के साजिशकर्ता हैं। गोदी मीडिया चैनलों के स्क्रीन के आगे बैठकर आपने जिन छात्र छात्राओं के बारे में यह सब कहा या सोचा, आज उन्हीं के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत दी है। नताशा नरवाल, दिवांगना कालिता, सफूरा जरगर, गुलफिशा फातिमा, इशरत जहां, खालिद सैफी, आसिफ इकबाल तन्हा, उमर खालिद को दिल्ली दंगों के कई मामलों में आरोपी बनाया गया है, गिरफ्तार भी किया गया है। अगर आप पिछले एक साल की अदालतों की टिप्पणियों और आदेशों को देखेंगे तो पाएंगे कि एक साल से यह बात कही जा रही है कि पुलिस ने कोई ठोस सबूत पेश नहीं किए हैं। सबूत न तब थे और न अब हैं। इसके बाद भी इन्हें जेल में रखने के लिए UAPA की धाराएं लगा दी गई ताकि जमानत आसानी से मिले ही ना। एक साल पहले इसी जून में सफूरा जरगर को जमानत इसलिए मिल गई क्योंकि सफूरा गर्भवती थीं। पूरा एक साल इनका निकल गया सलाखों के पीछे। आज दिल्ली हाईकोर्ट ने नताशा नरवाल, दिवांगना कालिता और आसिफ इकबाल तन्हा को UAPA के मामले में जमानत दे दी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि भड़काऊ भाषण और चक्का जाम करना आतंकी कार्रवाई नहीं है। क्या यह बात पुलिस नहीं जानती थी? क्या यह बात गोदी मीडिया नहीं जानता था? इन नौजवानों पर जो बीती है उसकी भरपाई कोई नहीं करेगा। हम जानते हैं कि जमानत मिली है, फैसला नहीं आया है, लेकिन अदालत की कई टिप्पणियां इस बात से भरी पड़ी हैं कि इन पर जो आरोप लगाए गए हैं उनके ठोस साक्ष्य नहीं हैं। जिन धाराओं में गिरफ्तार किया गया है उसके स्पष्ट आरोप भी नहीं है चार्जशीट में। इतनी यातना झेलने के बाद कोई इस तरह मुस्कुराते हुए हवा में हाथ लहरा सकती है, यह बात सभी को समझ नहीं आएगी। उन्हें तो बिल्कुल नहीं जो ना पहले शर्मिंदा हुए और ना अदालत के फैसले के बाद शर्मिंदा होंगे। यह तस्वीर उस वक्त की है जब नताशा नरवाल अपने पिता महावीर नरवाल के अंतिम संस्कार के बाद तिहाड़ लौटी थी। तिहाड़ के बाहर नताशा नरवाल की यह मुस्कुराती हुई तस्वीर उस दिन के लिए है जब वो आपके सामने होंगी और आपकी नजर नीची होगी। दिल्ली हाईकोर्ट की टिप्पणी सामान्य नहीं है कि नताशा पर लगाए गए आरोप आतंकी कार्रवाई की पुष्टि नहीं करते हैं। विरोध प्रदर्शन कर सामान्य नागरिक धर्म निभाने वाली नताशा जैसी लड़की को आतंकवादी बनाने की नाकाम कोशिश हुई। आज के इस दिन को देखने के लिए नताशा के पिता महावीर नरवाल इस दुनिया में नहीं है, जिन्हें अपनी बेटी की बेगुनाही और इंसाफ के सिस्टम पर यकीन था। इसी मई में उनका निधन हो गया। कोविड ने जब उन्हें जकड़ा तो बेटी को उनसे मिलने की जमानत नहीं मिली। उनके निधन के बाद नताशा को जमानत मिली ताकि वह अंतिम संस्कार में शामिल हो सके। नताशा ने ही पिता का अंतिम संस्कार किया। 32 साल की नताशा जानती होगी कि राज्य ऐसी यातनाएं न जाने कितने निर्दोष नागरिकों को देता रहा है। वह भी उन्हीं असंख्य लोगों में से एक है। इस देश में आम नागरिकों को फर्जी मुकदमों में फंसाना जितना आम है उतना दुनिया में शायद ही किसी देश में हो। फर्जी मुकदमों में लोग 20-20 साल तक जेल में रहने के बाद बरी हुए हैं। तिहाड़ के बाहर उसकी मुस्कुराती हुई तस्वीर दरअसल आपके लिए है कि इसी आसानी से किसी को भी आतंकी बना दिया जा सकता है, जेल में बंद किया जा सकता है। इस पर हंसने के सिवा कोई और क्या भी कर सकता है। नताशा नरवाल को FIR नंबर 48, FIR नंबर 50 में जमानत मिल चुकी थी। आज FIR नंबर 59 में जमानत मिली है। इसी FIR में UAPA की धाराएं लगाई गई हैं। आतंक के मामले में इसकी धाराएं लगाई जाती हैं ताकि जमानत मुश्किल से मिले। नताशा नरवाल, दिवांगना कालिता और आसिफ इकबाल तन्हा को जमानत देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि हमें यह कहना पड़ रहा है कि ऐसा लगता है कि असहमति को कुचलने की बेचैनी में, राज्य की सोच में प्रदर्शन करने के संवैधानिक अधिकार और आतंकवादी गतिविधियों के बीच अंतर की रेखाएं धुंधली हो गई हैं। अगर इस तरह की सोच को और बढ़ावा मिला तो वह हमारे लोकतंत्र के लिए एक उदास दिन होगा। कोर्ट ने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन एक संवैधानिक अधिकार है, गैर कानूनी नहीं है। अगर उनके द्वारा किए गए कृत्य और उसके सबूत प्रत्यक्ष रूप से यूएपीए की धाराओं के तहत इल्जाम नहीं है तो शांतिपूर्ण प्रदर्शन को यूएपीए के तहत आतंकवादी गतिविधि करार नहीं दे सकते। पिछले साल सितंबर में जब दिल्ली पुलिस ने 17,500 पन्नों की चार्जशीट दायर की थी तब कहा था कि चक्का जाम लोकतांत्रिक नहीं है। चार्जशीट में लिखते हुए उस अफसर ने खुद को शाबाशी तो दी होगी या इतिहास का डर लगा होगा थोड़ा सा कि आने वाले वक्त में जब इस चार्जशीट पर किताबें लिखी जाएंगी तो उसका नाम किस तरह से दर्ज होगा। दरअसल उसने इतना नहीं सोचा होगा। आखिर दिल्ली पुलिस ठोस सबूत क्यों नहीं पेश कर पाई? दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि नताशा के ऊपर भड़काऊ भाषण देने, चक्का जाम की प्लानिंग करने, महिलाओं को प्रदर्शन करने के लिए उकसाने जैसे आरोप लगाए गए, लेकिन अदालत को कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला जिससे पता चले कि याचिकाकर्ता ने हिंसा भड़काने की कोशिश की। आतंकी कार्रवाई की तो बात ही छोड़ दीजिए, तो यही मतलब हुआ ना कि कागज कलम का इस्तेमाल कर नताशा नरवाल को आतंक विरोधी कानून की धाराओं में जेल में बंद कर दिया जाए, बंद कर दिया गया।
शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन का हक गैर कानूनी नहीं है और आतंकी कार्रवाई नहीं है। भड़काऊ भाषण और चक्का जाम यूएपीए में आने वाले अपराध नहीं है। कॉलेज छात्रों के प्रदर्शन से हमारे राष्ट्र की बुनियाद कांपने नहीं लग सकती। यूएपीए आम अपराधों के लिए नहीं है। दिल्ली हाईकोर्ट ने ये सारी बातें दिल्ली दंगों के आरोप में गिरफ्तार किए गए 3 छात्रों को बेल देते हुए कही। इसी के साथ साल भर से जेल में बंद 24 साल के छात्र आसिफ इकबाल, 32 साल की जेएनयू छात्रा नताशा नरवाल और 31 साल की देवांगना कलिता को यूएपीए में बेल मिल गई।
ये बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट है। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने यही बोला है कि सिर्फ यूएपीए की धारा लगा देने से कुछ नहीं होता, हमको देखना होगा कि क्या कोई ऐसा टेररिस्ट एक्ट एलिज है। सिर्फ प्रोटेस्ट करना, भड़काऊ भाषण भी देना या चक्का जाम भी करना, इनको टेररिस्ट एक्ट नहीं कहा जा सकता।
दिल्ली पुलिस का आरोप है कि आसिफ इकबाल, देवांगना कलिता, नताशा नरवाल ने अपने साथियों के साथ मिलकर पूरा दंगा गढ़ा। धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए भड़काऊ भाषण दिए गए, सुनियोजित ढंग से दिल्ली में सड़कें बंद कराई जिससे धार्मिक दंगे भड़के और 50 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। पिछले दिनों नताशा नरवाल के जेल में रहते ही उसके पिता की कोरोना से मौत भी हो गई थी। दिल्ली हाईकोर्ट के इस फैसले का असर यूएपीए केस में बंद दूसरे आरोपियों की बेल पर भी पड़ेगा, जिसमें से उमर खालिद, मिरान हैदर, खालिद सैफी जैसे लोग हैं। दिल्ली हाईकोर्ट के इस आदेश ने एक बात तो साफ कर दी है कि जो प्रदर्शन करने का अधिकार है उसके तहत अगर प्रदर्शन किया जाता है, सड़कें जाम की जाती हैं या फिर उत्तेजक भाषण भी दिए जाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्रदर्शन करने वाले या उत्तेजक भाषण देने वाले आतंकवादी हो जाते हैं या फिर आतंकवादी गतिविधि में संलिप्त हो जाते हैं। और हम सबको याद होगा कि दिल्ली पुलिस ने जब चार्जशीट फाइल की थी यूएपीए में तो उन्होंने कहा था कि ये चक्का जाम करना अलोकतांत्रिक है। सहयोगी मनु नायर के साथ दिल्ली में सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।
उम्मीद है आप नागरिक जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस अनूप जे भंभानी का यह जजमेंट पढ़ेंगे तो इस बात के लिए शर्मिंदा होंगे कि एक कानून के खिलाफ प्रदर्शन करने के जायज संवैधानिक अधिकारों के लिए किसी नागरिक को इतनी सख्त सजा मिली। इन छात्र छात्राओं को आतंकी साबित करने का प्रयास हुआ। नताशा के पिता महावीर नरवाल के एक एक पल की कल्पना कीजिए जब उनकी बेटी जेल में है और उनकी सांसें उखड़ रही होंगी।
जेल कोई इतने खौफ की चीज नहीं है। क्या खौफ है जेल का, रह लेंगे। जैसे सी इज लुकिंग आफ्टर ए लाइब्रेरी, जेल लाइब्रेरी नॉट दिस डेज। सो हमने कहा कि हम किताबें भेजेंगे तुम्हारे लिए, गिफ्ट करेंगे तुम्हारी किताब को।
उर्दू सीख के आएगी, हमने बुक्स तैयार कर ली उसके लिए, उर्दू की।
उसको चैंपियन तो ना कहें सफरिंग का, लेकिन साथी तो जरूर है। एंड दैट्स व्हाई आई एम रियली प्राउड ऑफ।
महावीर नरवाल को याद किए बगैर नताशा नरवाल की कोई कहानी पूरी नहीं हो सकती, न जेल की न बेल की। कारवाए मोहब्बत ने उन पर यह डॉक्यूमेंट्री न बनाई होती तो आपके सामने ऐसा अद्भुत पिता होता ही नहीं, उनकी कहानी भी गायब कर दी जाती। महावीर नरवाल कभी नहीं डरे कि बेटी को पुलिस ले गई। 13 साल की थी नताशा जब उनकी मां गुजर गई। 32 साल की उम्र में उनके पिता नहीं रहे। अपनी बेटी के साथ किस तरह कोई खड़ा हो सकता है, ये उन पिताओं के लिए आश्चर्यजनक है जो नताशा की कहानी देखकर अपनी बेटियों को रोकने की प्लानिंग कर रहे होंगे कि तुम्हें ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। उन्हें खुद से पहले यह पूछना चाहिए कि क्या उन्हें ऐसा सिस्टम चाहिए। नहीं चाहिए तो उन्होंने ऐसी कहानी के सामने आने पर क्या किया। नताशा और देवांगना की गिरफ्तारी के वक्त कैसी कैसी खबरें चलाई गईं कि ताहिर के दंगा ब्रिगेड से पिंजड़ा तोड़ का कनेक्शन है। पिंजड़ा तोड़ और दिल्ली दंगों की फंडिंग का सोर्स एक ही है। पिंजड़ा तोड़ की ही सदस्य हैं देवांगना और नताशा। इस तरह की खबरें चलाई गईं और अब कोई सबूत नहीं है पेश करने के लिए। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि हमने स्पेशल कोर्ट के तर्कों से गुजरते हुए खास नजरिया देखा। याचिकाकर्ता पिंजड़ा तोड़, दिल्ली प्रोटेस्ट सपोर्ट ग्रुप, वॉरियर्स और औरतों का इनकलाब जैसे कई समूहों और व्हाट्सएप ग्रुप की सदस्य थी और एक बड़ी साजिश का हिस्सा थी और साजिशकर्ताओं से संपर्क में थी और इस वजह से उन्हें दोषी पाया गया। लेकिन कोर्ट ने आगे कहा है कि किसी इंडिपेंडेंट अथॉरिटी का ऐसे निष्कर्ष पर पहुंचने का कोर्ट के खुद के निष्कर्ष पर कोई असर नहीं होना चाहिए। फिर चाहे ऐसे रिव्यू के तहत यूएपीए की कार्रवाई करने की अनुमति को केंद्र सरकार ने ही क्यों ना दी हो, कोर्ट के अपने कानूनी आकलन में ऐसी किसी अथॉरिटी के रिव्यू और संतुष्टि का असर नहीं पड़ना चाहिए, और खास तौर पर जब वो यूएपीए जैसे गंभीर मामले में आकलन कर रहा हो, क्योंकि इसके तहत इल्जाम बहुत संगीन होते हैं और सजा बहुत कठोर।
अगर मान लो मेरी बेटी को बहुत लंबे टाइम जेल में रहना पड़ा और एक वक्त आएगा मेरे को देख ही ना पाए, ग्रोइंग एज मैं ना देख पाऊँ, इस तरह के थॉट कई बार आते हैं, उसको नहीं आएंगे, उसको आने भी नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा तो है नहीं ना कि कोई खुशी का माहौल तो है नहीं, हम तो अपना गम दबा लेते हैं कुछ कुछ बोल के। इसलिए तो जो आकाश है उसके कमरे को टाइडी रखता है। जब वो आएगी तो उसका कमरा ठीक ठाक मिलना चाहिए।
नताशा अब जिस घर में जाएंगी कमरा तो ठीक ठाक मिलेगा, लेकिन पिता महावीर नरवाल वहां नहीं होंगे। मैं दरअसल नताशा के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहा, मैं उन अफसरों और उनके परिवारों के बारे में सोच रहा हूं जिन्होंने ऐसी चार्जशीट लिखी। काश मैं आज की एंकरिंग उनके घर से कर रहा होता, उनके परिवार के साथ बैठा होता और आपको दिखाता कि ऐसे लोग भी कम खुशहाल नहीं होते हैं। हम आप जैसे लोग अदालत की जिन टिप्पणियों को लेकर लोकतंत्र और उम्मीद का जश्न मनाते हैं, दरअसल ऐसे अफसरों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें तो यह भी नहीं पता कि इस फैसले के बाद डाइनिंग टेबल पर उनके बच्चे उनसे क्या सवाल करेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि जिन संगठनों को खतरनाक रूप में पेश किया गया है उनमें अदालत को ऐसा नहीं लगा कि ये सब यूएपीए की धाराएं 15, 16, 17 के तहत अपराध बनते हैं। मतलब यूएपीए के तहत आतंकवाद के दोष लगाने का कोई आधार नहीं बनता, ना ही कोई ठोस इल्जाम लगाया गया है। सोचिए 17,500 पन्ने की चार्जशीट बनाई जाती है और इन धाराओं के संबंध में कोई ठोस आरोप तक नहीं होते, कोई साक्ष्य नहीं होता, लेकिन इतनी संगीन धाराएं लगा दी जाती हैं, राज्य का इसमें कुछ भी नहीं जाता है। पुलिस का कुछ नहीं जाता है, गोदी मीडिया का कुछ नहीं जाता है, जाता है तो उनका जो बिना कुछ किए इतने साल जेलों में रहते हैं, मानसिक यातना से गुजरते हैं। रोहतक की नताशा नरवाल जेएनयू से पीएचडी कर रही हैं और असम से 31 साल की देवांगना जेएनयू से ही एमफिल कर रही हैं। दोनों ही पिंजड़ा तोड़ की सदस्य हैं। नताशा और देवांगना को 22 फरवरी 2020 के रोज गिरफ्तार किया गया। एफआईआर नंबर 48 में इन पर नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में नारे लगाने के आरोप। तब उसमें कहीं नहीं लिखा था कि किसी ने हिंसा की बात की है। बस इन पर पुलिस के अफसर पर हमला करने की धारा लगाई गई थी। इस मामले में नताशा को जमानत मिल गई। कोर्ट ने कहा कि उन पर यह मामला बनता ही नहीं है, लेकिन उसके बाद भी नताशा नरवाल तुरंत गिरफ्तार कर ली गई। तब नताशा पर पहले से और भी गंभीर आरोप लगा दिए गए, हत्या के प्रयास के। इस FIR का नंबर है 50। इसमें नरवाल या कालिता या किसी के नाम नहीं है। उसके बाद नरवाल पर भी UAPA लगा दिया जाता है। आरोप लगता है कि दिल्ली में दंगों के पीछे साजिश रच रही थी। इन दोनों के नाम भी FIR नंबर 5959 में जोड़ दिए जाते हैं और गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसके अलावा गुलफिशा फातिमा जो MBA की छात्रा हैं, उन्हें भी राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। इशरत जहां को भी।
रवीश, आज का दिन सिविल लिबर्टीज के लिए बहुत बड़ा दिन है। दिल्ली हाई कोर्ट के 3 जजमेंट दिल्ली दंगों के बारे में आए हैं। तीनों केसेस में बेल दी गई है। आपको मालूम है, मैं आपके शो पे बताता रहा हूं कि मैं संविधान पढ़ाता हूं और क्रिमिनल लॉ पढ़ाता हूं। दोनों चीजों के लिए बहुत बड़ा दिन है। संविधान के लिए अनुच्छेद 19 की व्याख्या में कह दिया कि राइट टू प्रोटेस्ट कैन नॉट बी कॉल्ड अ टेररिस्ट एक्टिविटी, बल्कि पैराग्राफ 36 में नताशा के केस में जज ने कहा कि अगर ये लाइन बिटवीन राइट टू प्रोटेस्ट और टेररिज्म के बीच ब्लर्ड होती जा रही है और ये माइंडसेट बनता जा रहा है, तो ये देश के जनतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसी तरह क्रिमिनल लॉ के लिए मैंने बार बार कहा है कि फंडामेंटल थम रूल क्रिमिनल लॉ का ये है कि क्रिमिनल स्टैट्यूट्स में नैरोएस्ट पॉसिबल डेफिनेशंस क्राइम की दी जानी चाहिए। चाहे टाडा हो चाहे यूपा हो, बहुत वाइड डेफिनेशन आतंकवाद की दी हुई है। जजमेंट में लिख दिया गया कि यूपा में जो डेफिनेशन दी गई है वो वाइड है और समवॉट वेग है। मैं ये समझता हूं कि जिस तरीके से दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस अनूप जयराम ने कहा कि अगर वाइड डेफिनेशन लेजिस्लेचर ने दी है, तो अदालत का ये काम है कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स को माइंड में रखते हुए उसका नैरो इंटरप्रिटेशन कर दे। कोर्ट ने याकूब मेमन का केस कोर्ट किया और कहा कि आतंकवाद में क्या होता है कि हत्या होती है, कार बम हो, एक्सप्लोजन हो, हाईजैकिंग हो, केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन्स का इस्तेमाल हो। रवीश, PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जजमेंट कोर्ट किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है 2004 में कि आतंकवाद का मतलब है डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार को हटाने की कोशिश की जाए, संविधान के मूलभूत प्रिंसिपल्स को जमीन पर पामाल कर दिया जाए और सेकुलर फैब्रिक को टियर अपार्ट कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कोर्ट किया 1994 का कि हर आतंकवादी क्रिमिनल है, लेकिन हर क्रिमिनल आतंकवादी नहीं। मैं ये समझता हूं कि ये जो जजमेंट यूपा के बारे में इंटरप्रिटेशन का आया कि ऑर्डिनरी लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम को यूपा के चार्जेस से ना डील किया जाए, ये एक बहुत हिस्टोरिक जजमेंट है। कोर्ट ने कहा कि ये जो लोग हैं इनके बारे में कोई स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं है, यानी किसी के बारे में ये कह दिया जा रहा है कि साहब उसने मिर्ची का पाउडर और एम्प्टी बॉटल्स रखी, किसी के बारे में ये कह दिया जा रहा है आसिफ इकबाल के बारे में कि साहब उन्होंने एक सिम कार्ड दिया, उससे एक व्हाट्सएप ग्रुप दूसरे ने बना लिया, उस ग्रुप में CAA के प्रोटेस्ट के बारे में चीजें आ गई। कोर्ट ने कहा कोई स्पेसिफिक पर्टिकुलराइज्ड एक्शन उनका नहीं है जिसको आतंकवादी एक्टिविटी माना जा सके, और जिस दिन का ये वाकया है उस दिन वो लोग वहां मौजूद भी नहीं थे। मैं ये समझता हूं कि आज के जजमेंट के बाद अब दिल्ली पुलिस रियलाइज करेगी कि जो लॉ का मिसयूज किया है वो नहीं करना चाहिए, और दिल्ली दंगों के जो रियल कल्प्रिट्स हैं उनको प्रोसिक्यूट करने की कार्रवाई की जाएगी।
तो क्या इन्हें लंबे समय तक जेल में रखने के लिए UAPA की धाराएं लगाई गई? जमानत ना मिले इसके लिए इतनी मेहनत की गई, लेकिन इस दौरान पुलिस ने ही कौन से मजबूत साक्ष्य जुटा लिए? पिछले साल अदालत जो कहती आ रही है वही हाईकोर्ट के आदेश में भी तो है। पिछले साल सितंबर में FIR नंबर 50 यानी जाफराबाद मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने देवांगना कालिता को बेल देते हुए कहा था कि जांच एजेंसियां ऐसा कोई भी साक्ष्य नहीं दे पाई हैं जिससे ये साबित होता हो कि देवांगना के किसी भाषण ने एक समुदाय की महिलाओं को भड़काया हो या फिर उनके भाषण से हिंसा भड़की हो जिससे जान माल का नुकसान हुआ हो। इसी कोर्ट ने नताशा नरवाल के मामले में कहा कि जो वीडियो दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में दिखाए हैं उनसे नहीं साबित होता है कि नताशा हिंसा में शामिल थी या हिंसा को भड़का रही थी। नताशा नरवाल और दिव्यांगना कालिता के साथ जामिया के छात्र आसिफ इकबाल तन्हा को भी बेल मिली है। 24 साल के आसिफ इकबाल तन्हा झारखंड के हजारीबाग से हैं। गरीब परिवार से आते हैं और दिल्ली में अपनी पढ़ाई का खर्चा खुद उठाते हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया में फारसी भाषा की पढ़ाई कर रहे हैं। दिल्ली दंगों के मामले में आरोपी बना दिए गए, एक साल से जेल में हैं। कोर्ट ने आसिफ को जमानत देते हुए कहा कि चार्जशीट में जिन बातों का हवाला दिया गया है उसमें ऐसा कुछ नहीं जिससे लगे कि आसिफ साजिशकर्ताओं का नेतृत्व कर रहा था। इस आदेश को पढ़कर आपको गर्व हो सकता है लेकिन अफसोस भी होता है और शर्म भी आती है कि एक आंदोलन को कुचलने के लिए तमाम मर्यादाओं को कुचलकर इन्हें किस तरह से आरोपी बनाया गया और जेल में डाल दिया गया। दिल्ली पुलिस ना वीडियो पेश कर पाई और ना ऐसे सबूत पेश कर पाई जिससे लगे कि उसके आरोपों में दम है। फिर भी दिल्ली पुलिस को चिंता इस बात की थी कि उमर खालिद और खालिद सैफी को हथकड़ियों में बांधकर पेशी के लिए लाया जाए। इसी अप्रैल के महीने में पुलिस ने अपनी याचिका में कहा कि उमर खालिद के हाथ कैसे बांधे जाएं, पीछे से हथकड़ी लगाने की बात कही गई। तब एडिशनल जज विनोद यादव ने कहा कि पुलिस अपना पक्ष और स्पष्ट करे। 6 जून को जज विनोद यादव ने कहा कि दिल्ली पुलिस की याचिका में कोई दम नहीं है, मेरिट नहीं है। उमर खालिद और खालिद सैफी कोई गैंगस्टर नहीं है और ना ही अपराध का पुराना रिकॉर्ड है। दिल्ली पुलिस और जेल की याचिका बिना सोचे समझे दी गई है। यह प्रसंग इसलिए बता रहा हूं ताकि आप समझ सके कि इस केस में क्या हो रहा है और क्या किया जा रहा है। अब आप एक काम कीजिए, YouTube में जाइए, पिछले साल इनकी गिरफ्तारी के वक्त न्यूज चैनलों का कवरेज देखिए। इनके लिए बिल्कुल मत देखिए, अपने लिए देखिए और पूछिए खुद से कि क्या आप ऐसा भारत चाहते हैं जो आप में से किसी को इसी तरह उठाकर आतंकी बनाकर पेश कर दे और सैकड़ों चैनलों के एंकरों को लगाकर साबित कर दे। आप उनके कार्यक्रमों के सवाल और बातों को सुनिए, फिर से दहशत हो जाएगी कि ऐसा भी हो सकता है। ऐसा ही होता है यहां, और क्या होता है। अब आपको एक और खबर दिखाता हूं। हरियाणा के नूह में 21 साल के जुनैद की मौत के मामले में फरीदाबाद पुलिस के 7 पुलिसकर्मियों पर हत्या का मामला दर्ज हुआ है। आरोप है कि जुनैद को ठगी के मामले में पुलिस पूछताछ के लिए ले गई, उसे 3rd degree टॉर्चर दिया गया जिससे उसकी मौत हो गई।
ये तस्वीरें नूह के पुनहाना की हैं, जहां 21 साल के जुनैद की मौत के बाद लोगों का गुस्सा पुलिस पर फूटा। उन्होंने पथराव भी किया और गाड़ियों में तोड़फोड़ करते हुए आग लगा दी। जुनैद नूह के इसी जमालगढ़ गांव का रहने वाला था। आरोप है कि जुनैद को फरीदाबाद पुलिस ठगी के एक मामले में पूछताछ के लिए ले गई, वहां उसे इतना पीटा गया कि उसकी मौत हो गई।
तो जुनैद जब वहां से लौट के आया था तो क्या उसके निशान थे चोट के?
वो ऐसा ऐसा हो रहा, काफी निशान, बीपी हाई लो, खूब निशान हुआ के खूब पेट में कुछ ना पचवा के अपने चलो जा ना हलो जा उठा ले।
उसने क्या बताया था आपको, क्या बताया था उसने?
नहीं बताया कि मैं मारो ना। अच्छा। मैं से मारो रोवे रोवे कुछ बताओ ना।
पुलिस वालों ने मारा?
पुलिस वालों ने मारो।
अच्छा।
हाँ, ऐसे बताया भाई।
पेशे से पेंटर जुनैद 6 भाई बहनों में सबसे छोटा था। आरोप है कि फरीदाबाद पुलिस ने जुनैद को 31 मई को उसके साथियों के साथ गांव के पास से पकड़ा। 1 जून को ठगी के मामले में भूमिका न होने के चलते जुनैद को छोड़ दिया गया, लेकिन इसके बाद जुनैद की तबीयत बिगड़ती गई। इसी बीच ठगी के उसी मामले में फरीदाबाद पुलिस ने जुनैद के दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर लिया। फिर 11 जून को जुनैद की मौत हो गई। अब जुनैद के गांव से हिंसा को लेकर गिरफ्तारियां हो रही हैं, इसलिए गांव में सन्नाटा है।
इतना भय का माहौल है जी कि गाँव आधा से भी ज्यादा भगा हुआ है। और मतलब बच्चे बीवी सारी भैंस काट को सबको ढोर जंगलों को ले गए यहाँ से गांव वाले। अब ये माहौल है कि रात को और दिन को पुलिस का इतना डर है कि गांव वाले तो बाहर जाके सो जाते हैं और रात में चोर आते हैं मनचा जो चोरी कर ले जाते हैं।
वहीं नूह पुलिस ने फरीदाबाद के साइबर थाने के 7 पुलिस कर्मियों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक जुनैद की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, उसके शरीर पर चोट के निशान नहीं मिले हैं।
302/342/34 IPC के तहत दर्ज किया गया है, जिसके अंदर मुताई खतीजा है जमालगढ़ की रहने वाली लेडी और मृतक जुनैद है, 7 अपने पुलिस मुलाजम हैं जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, जिस संबंध में इन्वेस्टिगेशन जारी है और पता लगाया जा रहा है कि सच झूठ क्या है, जो सच्चाई के आधार पर जैसा होगा वैसी कार्रवाई की जाएगी।
फरीदाबाद पुलिस का कहना है कि जुनैद के परिवार के आरोप गलत हैं। जुनैद को किडनी से जुड़ी बीमारी थी जिसके चलते उसकी मौत हो गई, जबकि परिवार कह रहा है जुनैद बिल्कुल स्वस्थ था। जुनैद की मौत के मामले में पुलिस ने हत्या का केस तो दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी तक कोई भी पुलिस कर्मी गिरफ्तार नहीं हुआ है। वहीं पुलिस लगातार गाँव में दबिश दे रही है, जिसके चलते गाँव में दहशत का माहौल है। यहाँ तक कि अधिकतर गांव वाले गांव छोड़कर चले गए हैं। नूह के जमालगढ़ गांव से कैमरामैन शशिकांत के साथ मैं मुकेश सिंह, NDTV इंडिया।
अमेरिका की पुलिस ने नस्लभेदी टिप्पणी करते हुए जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या कर दी तो वहां आंदोलन खड़ा हो गया, वहां का समाज हिल गया, बहस शुरू हो गई। लेकिन भारत एक शांति प्रिय देश है, यहां शांतिपूर्ण आंदोलन करने पर लड़कियों को आतंकी बताकर जेल में डाल दिया जाता है। ब्रेक लेना ठीक रहेगा, यह जानकर आप क्या करेंगे कि मध्यम वर्ग सरक कर निम्न मध्यम वर्ग में आ गया और निम्न मध्यम वर्ग सरक कर गरीबी रेखा के नीचे से चला गया। जो कहीं नहीं गया वही तो टीवी देख रहा है। ब्रेक ले लेते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक साल के भीतर 200 अस्पताल खुल गए। सरकार को पहले से चल रहे सरकारी अस्पतालों के लिए 5,000 डॉक्टर नहीं मिल रहे हैं। अनुराग द्वारी ने सोचा कि 200 अस्पताल कैसे खुल गए, इनके लिए डॉक्टर नर्स कहां से आए होंगे। बस इसी एक सवाल से शुरू हुई रिपोर्ट जहां पहुंची है वहां आपको ले जाना चाहता हूं। एक ही डॉक्टर 8 से 10 अस्पतालों में रेजिडेंट डॉक्टर के नाम से रजिस्टर्ड है, मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल का लाइसेंस है, लेकिन एक अस्पताल में एक डॉक्टर तक नहीं है।
ये भोपाल के ऐशबाग इलाके में बना भारतीय मल्टी केयर अस्पताल है। अप्रैल 2021 में रजिस्ट्रेशन हुआ। यहाँ जनरल सर्जरी, इंटरनल मेडिसिन, गायनिकोलॉजी जैसी कई सेवाएं हैं, कम से कम कागजों पर।
सिर्फ 2 बेड लगे हुए हैं और एक ICU भी है यहाँ पर छोटा सा, और जो इस तरफ में यहाँ पर भी ICU में भी 3 छोटे छोटे बेड लगे हुए हैं, इसीलिए ICU में और कोई सुविधाएं है नहीं। डॉक्टर्स विजिट करते हैं यहाँ पर?
जी सर, विजिट वाले भी हैं, इसके बाद में जिनका रजिस्ट्रेशन लगा हुआ है वो भी हैं।
जो भारतीय मल्टी केयर हॉस्पिटल का बोर्ड आप देखेंगे, यहाँ पर नेत्र रोग, जनरल सर्जरी, जनरल मेडिसिन, पैथोलॉजी, हड्डी रोग, चर्म रोग, फिजियोथेरेपी, बाल नवजात शिशु चिकित्सा, नर्सरी, और इनको एलोपैथी का लाइसेंस मिला हुआ है।
ये भोपाल का ही आशा मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल है। अप्रैल 2021 में रजिस्ट्रेशन हुआ। दस्तावेजों के मुताबिक यहाँ गैस्ट्रो, जनरल सर्जरी, गायनकोलॉजी, ऑर्थोपेडिक, एंडोक्रिनोलॉजी जैसी कई सेवाएं हैं, यहाँ भी कम से कम कागजों पर ही।
ICU है, बस सिलेंडर ऐसे रखा हुआ है और तो कुछ है ही नहीं। ICU का बोर्ड लगा, सिलेंडर है। ये रेट चार्जेज है यहाँ पर।
इन दोनों अस्पतालों में एक बात साफ है कि जिन डॉक्टरों के नाम से रजिस्ट्रेशन हुआ वो यहाँ काम नहीं करते।
शशिकांत द्विवेदी, इसमें से कोई डॉक्टर नहीं है आपके यहाँ पर? और ये राहुल मायावती?
भोपाल के भारती मल्टी केयर में रेसिडेंट डॉक्टर हरिओम वर्मा 104 किलोमीटर दूर सुगन देवी अस्पताल में भी रेसिडेंट डॉक्टर हैं। जो शाजापुर जिले के शुजालपुर में आता है। इसे आपदा में अवसर कहिए या कुछ और, राजधानी भोपाल में कुल 503 अस्पताल, पैथोलॉजी लैब, डेंटल क्लिनिक हैं, लेकिन 212 कोरोना काल यानी जनवरी 2020 से मई 2021 तक खुले हैं। इस अवधि में सिर्फ अस्पतालों की बात करें तो भोपाल में 104 अस्पतालों के रजिस्ट्रेशन हुए हैं, इनमें भी 29 अस्पताल मार्च, अप्रैल, मई में खुले। राज्य के तीन और बड़े शहरों को लें तो इंदौर में 274 अस्पताल हैं, 48 पिछले साल भर में खुले। जबलपुर में 138 अस्पताल हैं, 34 साल भर में खुले, जबकि ग्वालियर में 360 अस्पताल हैं, जिसमें से 116 पिछले एक साल में खुले। एनडीटीवी को जो दस्तावेज मिले हैं वो बताते हैं कि कैसे एक एक डॉक्टरों के नाम 8 से 10 अस्पतालों में भी बतौर रेसिडेंट डॉक्टर दर्ज हैं, वो भी अलग अलग शहरों में। इन अस्पतालों के उदाहरण से आप समझ गए होंगे कि इनके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेशन जारी करते वक्त ना तो सुविधा जांची गई ना डॉक्टरों के नाम।
क्या आपदा में अवसर है कि एक एक डॉक्टर 10-10 अस्पताल?
देखिए, ये सुनिश्चित है और नेशनल मेडिकल काउंसिल की जो अर्हताएं हैं, जो नियम है, उसका पालन करना सभी को बहुत जरूरी है। यदि इस तरह की कहीं कोई शिकायत होगी तो निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। सही मायने में एक व्यक्ति को एक ही जगह काम करना है और ये NMC के पोर्टल के माध्यम से सुनिश्चित भी होता है। मुझे नहीं लगता है कि ऐसी स्थिति होगी, परंतु यदि कहीं शिकायत आएगी तो उस पर जांच भी की जाएगी और कार्रवाई भी की जाएगी।
मंत्री जी को नहीं लगता, इसलिए हमने दोनों अस्पताल उसी इलाके के ढूंढे जो उनके विधानसभा क्षेत्र में हैं।
आश्चर्यजनक यही है कि जैसे इस अस्पताल में जो रेसिडेंट डॉक्टर काम कर रहे हैं वो मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों के अस्पतालों में भी रजिस्टर्ड हैं, तो आखिर ये जादू हुआ तो हुआ कैसे?
जानकार कहते हैं कोई MBBS डॉक्टर अधिकतम 2 अस्पतालों में बतौर रेसिडेंट ड्यूटी कर सकता है, नर्सिंग होम में रेसिडेंट डॉक्टर 8 घंटे की वार्ड ड्यूटी करता है। ये हैरत की बात है कि साल भर में अकेले भोपाल में 104 अस्पतालों को मान्यता मिल गई। जाहिर सी बात है, सरकारी किताब में उन्होंने सारे नियम कम से कम कागजों पर पूरे किए होंगे, लेकिन सरकारी अस्पतालों में कोरोना ड्यूटी पर तैनात डॉक्टरों को 18-18 घंटे ड्यूटी करनी पड़ रही है। वजह है डॉक्टरों की कमी। अभी प्रदेश में 5,000 डॉक्टरों की जरूरत है, 13 मेडिकल कॉलेज में 1,000 तो सरकारी अस्पतालों में 4,000 डॉक्टरों के पद खाली हैं, 16,000 नर्सिंग स्टाफ की कमी है, वैकेंसी भी निकली लेकिन कोई नहीं आया। देश में अभी 11,082 लोगों पर औसतन एक सरकारी डॉक्टर है, मध्य प्रदेश में 16,996 लोगों पर एक डॉक्टर, जबकि WHO के मुताबिक 1,000 लोगों पर एक डॉक्टर होना चाहिए। लेकिन ऐसा कैसे हुआ कि इन अस्पतालों ने सारी शर्तें पूरी कर दी, वो भी तब जब राज्य के तमाम जिला अस्पतालों में 794 ICU बेड थे और मेडिकल कॉलेजों में 3,660 और उन्हें डॉक्टर नहीं मिल रहे थे। ऐसे में हैरत नहीं कि सारे अजब गजब मामले मध्य प्रदेश में ही हो रहे हैं। कुछ दिनों पहले सीरम इंस्टीट्यूट को जबलपुर के किसी मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट से 10,000 कोविशील्ड डोज का ऑर्डर मिला। वैक्सीन मिलने के बाद जांच शुरू हुई तो चौंकाने वाली बात पता लगी, वो ये कि मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट नाम का कोई भी अस्पताल जबलपुर में है ही नहीं।
तो मैंने जाके इन हॉस्पिटल मतलब इस हॉस्पिटल को खोजने की कोशिश की, वो हमारे जबलपुर में इस नाम का कोई भी हॉस्पिटल नहीं है, जिसकी जानकारी मेरे द्वारा राज्य शासन को दे दी गई। वैसे तो सीरम कंपनी ने बोला है कि ये ऑर्डर प्लेस किया गया है, उनके पास ऑर्डर प्लेस करने कुछ तो सीमाएं होती होंगी, कुछ ऐसे अनुबंध किए जाते होंगे, वो लोग ही ज़्यादा अच्छा बता पाएंगे। मेरे द्वारा ये जो जानकारी मिली थी तो मैंने अपने उच्च स्तर मतलब राज्य स्तर को भेज दिया है।
इस खबर के बाद सरकार क्या कर सकती है, ऐसे अस्पतालों की मान्यता रद्द कर सकती है या डॉक्टरों का मेडिकल काउंसिल से रजिस्ट्रेशन निरस्त हो सकता है, लेकिन क्या ये सिर्फ दो लोगों के बीच की मिलीभगत है? उन अधिकारियों का क्या जिन्होंने जानबूझकर आंखें मूंदे रखी, और उस सिस्टम और उस सत्ता का क्या जिसके वक्त ये घोटाले होते रहे? भोपाल से अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया।